दूसरे तरफ धानी रंग के खूबसूरत लहंगे में सजी आहाना दीवान पर बैठी थी। वो अपने आसपास बैठी लड़कियों को देख रही थी, जिनमें अंतरा सबसे आगे थी। सब मिलकर उसके लिए डिज़ाइन फाइनल कर रहे थे। आहाना खामोश बैठी थी। उनकी बातें और बहस सुनकर वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिरकार पूरी बहस के बाद अंतरा की जीत हुई। वो मेहंदी वाली के साथ अपनी जीजी के हाथों में मेहंदी रचाने बैठ गई। निशांत उसका फोटोग्राफर बना हुआ था। हालांकि अलग से फोटोग्राफर आया था, पर अंतरा का अपना अलग शौक था। आहाना के साथ कुछ और औरतें भी मेहंदी लगवाने बैठ गई थीं। कुछ औरतें जो अपने घर से मेहंदी लगाकर आई थीं, वहीं बैठी ढोलक बजाते हुए सुरलहरियाँ छेड़ रही थीं। अंतरा ने अपनी दोस्तों और बहनों की ड्यूटी लगाई थी महफिल सजाने की। सब खूब धमाल मचा रहे थे, खूब रौनक लगी हुई थी। आहाना की मेहंदी रची हथेलियों में कहीं गहराई में अक्षय का नाम छुपा था। आहाना को मेहंदी लगवाने में काफ़ी वक्त लगा था। वो दुल्हन थी और उसकी मेहंदी सबसे खास होने वाली थी। बेचारी आहाना बैठे बैठे बुरी तरह थक चुकी थी। न हाथ हिला पा रही थी और ना ही पैर। वो किसी जीती जागती गुड़िया की तरह एक ही पोजिशन में बैठी थी, जिससे उसका बदन अकड़ गया था। पर बैठना मजबूरी थी, सो वो बैठी रही। अंतरा बड़े ध्यान से उसे मेहंदी लगा रही थी, साथ ही अपने साथ बैठी लड़की को भी गाइड कर रही थी। वो कहीं कमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। पल्लवी मेहमानों और आहाना की ज़रूरतों का ख्याल रख रही थी। उसने जयंती जी को ज़िद करके अपनी मम्मी के साथ मेहंदी लगवाने बिठा गया था। भूख से बिलबिलाता अक्षय खाने के इंतज़ार में बैठा था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद अन्वय खाने की ट्रे लेकर उसके सामने हाजिर हो गया। उसने शैतानी मुस्कान लबूकर सजाते हुए कहा, लीजिए भाई, आ गया आपका स्पेशल मेन्यू, जो खास आपके लिए तैयार किया गया है। स्पेशल खाने के नाम पर सुबह से मुझे भूखे मार दिया तुम लोगों ने। ला जल्दी ला जो भी लाया है। बेचारे भूख से बेहाल अक्षय ने बड़ी ही बेकरारी से खाना अपने पास लाने का इशारा कर दिया। अन्वे लबों पर शैतानी मुस्कान सजाए उसके पास आया और ट्रे उसके सामने रख दी। उसकी शैतानी मुस्कान गवाह थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर अक्षय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बड़े ही उतावलेपन से उसने ट्रे की ओर नज़र घुमाई, पर जैसे ही नज़र उस स्पेशल मेन्यू पर गई, उसकी सारी एक्साइटमेंट एक झटके में गायब हो गई। हैरत से उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और मुंह ऐसा बन गया मानो किसी ने कड़वा करेला उसके मुंह में भर दिया हो। ये क्या भद्दा मजाक हो रहा है मेरे साथ? गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से अक्षय ने अन्वय को घूरा। बदले में अन्वय ने मासूम सी सूरत बनाई और अनजान बनते हुए कहा, कैसा मजाक भाई? स्पेशल मेन्यू कहकर पुड़ी और खीर मेरे सामने रख दी, ये मजाक नहीं तो और क्या है? अक्षय ने तैश में सवाल किया। उसे सब अन्वय की शरारत लग रही थी, सो वो उसी के सर पर सवार हो गया था। भाई, ये कोई मजाक नहीं, आपकी हकीकत है। आपको आज और कल सिर्फ मीठा ही खाना है, और ये फरमान आपकी पूज्य माता जी ने जारी किया है। अन्वय ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया। ये सुनकर अक्षय बुरी तरह चौंक गया। फटी आंखों से बेयकीनी से उसने अन्वय को देखा और हैरानगी से कहा, माँ जानती है कि मुझे मीठा ज़रा भी पसंद नहीं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? भाई, ये भी एक रस्म है। जब दीदी की शादी हुई थी तो उन्हें भी मीठा खिलाया गया था। कहते हैं कि शादी से पहले मीठा खाने से शादीशुदा जोड़े में लड़ाई नहीं होती, और होती भी है तो प्यार भरी मीठी नोकझोंक। इसलिए मजबूरी में ही सही, पर आपको भी यही सब खाना होगा। क्या बकवास है ये, खाने से लड़ाई का क्या ताल्लुक? अक्षय बुरी तरह से खींच उठा। उसे झुंझलाटे देखकर अन्वय ने बेहद संजीदगी से कहा, ताल्लुक तो कुछ नहीं, पर रिवाज है तो मुंह नहीं मुड़ा जा सकता। बस दो दिन की बात है, शादी वाले दिन तो वैसे भी आपका व्रत है, उसके बाद आप जो चाहे खा सकते हैं। तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। भाभी भी तो वहां आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज कर रही होंगी, उन्हें भी ऐसा ही खाना दिया गया होगा, शादी वाले दिन उनका भी व्रत है। अब आप दोनों शादी के अटूट बंधन में बनकर सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं, तो शुरुआत यहीं से कीजिए। शादी की रस्मों के नाम पर ये तो टॉर्चर किया जा रहा है मुझे, और आहाना का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल, अक्षय ने चिल्लाते हुए कहा। फिर आहाना के बारे में सोचते हुए मन मारकर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। अन्वय अपनी जीत पर मुस्कुरा उठा। आखिरकार वो अक्षय को खाना खिलाने में कामयाब हो गया था। दोपहर का वक्त हो चला था। लंच के बाद सब मेहमान अपनी अपनी जगह पकड़ चुके थे। हाथों में मेहंदी रचाने के बाद औरतों के पास बहाना था। सुबह खा पीकर कमर सीधी करने के बहाने पड़ी हुई थीं। लड़कियां भी नाच गाकर अब थकान उतार रही थीं। सुबह निकले द्रिशांत ने अब जाकर घर में कदम रखा था। आंगन में पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे वहां बैठी पल्लवी और अंतरा पर गई। उन दोनों का ध्यान भी उसकी ओर गया और द्रिशांत को देखते ही पल्लवी उठकर खड़ी हो गई। आ गए आप, कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सबने लंच कर लिया पर आपका कुछ पता ही नहीं था। अब आ गए हैं तो हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पल्लवी एक बार शुरू हुई तो द्रिशांत को बोलने का मौका न देते हुए एक ही सांस में सब बोलती चली गई। द्रिशांत ने खामोशी से उसकी पूरी बात सुनी, फिर भौं उचकाते हुए कहा, तुम दोगी खाना? हाँ, पल्लवी ने झट से सहमति में सर हिलाया। फिर द्रिशांत की निगाहों का पीछा करते हुए उसकी नज़र अपने हाथों पर गई। अपनी मेहंदी रची हथेलियों को देखकर उसे द्रिशांत के रिएक्शन और सवाल की वजह समझ आई। पल्लवी ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया और कातर निगाहों से द्रिशांत को देखते हुए मायूसी भरे स्वर में बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है।
उसकी मासूम सी सफाई सुनकर दृशांत हौले से मुस्कुरा दिया। इट्स ओके, पर तुमने पहले मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? अब यहाँ अकेले बैठकर क्यों लगा रही हो? और सारी जनसंख्या कहाँ गायब है? दृशांत का सवाल सुनकर पल्लवी कुछ कहती उससे पहले ही अंतरा तुनकते हुए बोल पड़ी, कैसे लगवाती पहले भाभी? तब तो सब मेहंदी लगाने की होड़ लगा रहे थे। भाभी मेहमान नवाजी में लगी थी, उनकी फरमाइशें पूरी कर रही थी, फिर लंच की तैयारी में लग गई। अब जब सब ऐश मौज करके खाना ठूंसने के बाद आराम फरमा रहे हैं, तब जाकर भाभी को काम से थोड़ी फुर्सत मिली है, इसलिए मैं उन्हें मेहंदी लगाने लगी हूँ, वरना वो फिर काम में लग जाती और दुनिया भर को मेहंदी लगाने वाली अंतरा की भाभी की ही हथेलियां सुनी रह जाती। अंतरा ने मेहंदी फंक्शन में मेहंदी लगवाने के लिए लगी होड़ को याद करते हुए बुरा सा मुंह बना दिया। उसको गुस्से में नथुनी फुलाते देखकर पल्लवी ने सौम्यता से उसे समझाया, अंतरा शादी के घर में ऐसा होता रहता है, फिर हम घर वाले हैं, शादी हमारे परिवार में है तो काम भी हमें ही करने होंगे। पल्लवी की बात सुनकर अंतरा ने नाक से कोरते हुए मुंह ऐंठ लिया, मतलब साफ था कि वो अब भी गुस्से में थी और उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अंतरा, माँ कहाँ है? उन्होंने मेहंदी लगवाई या वो भी तुम्हारी भाभी जैसे कामों में ही लगी रही? दृशांत ने नाराजगी भरी निगाहें पल्लवी पर डालते हुए अंतरा से सवाल किया, पर उसकी नाराजगी को भांपते हुए जवाब पल्लवी ने दिया था, जी उन्हें मैंने आहाना के साथ ही मेहंदी लगवा दी थी, अभी वो कमरे में आराम कर रही है, सर में थोड़ा दर्द था तो मैंने कहा कि कुछ देर रेस्ट कर ले। दृशांत ने सर हिलाते हुए चिंतित स्वर में अगला सवाल किया, उन्होंने लंच किया, तुम लोगों ने खाना खाया और अनु उसने कुछ खाया या नहीं?
दृशांत के सवाल पर अंतरा तपाक से बोल पड़ी, मैंने तो खा लिया, माँ को भी खिला दिया, जीजी शायद बैठे बैठे थक गई थी तो वो सो रही है इसलिए उन्हें नहीं जगाया, और मेरी भाभी ने नहीं खाया, वो पहले सबको खाना परोसने में लगी थी फिर आपका इंतजार कर रही थी। अब आप आ गए हैं तो खुद भी खाना खाइए, साथ में भाभी को भी खिलाइए, पर कमरे में जाकर, यहाँ कभी भी कोई भी आ सकता है, और मैं भी आप दोनों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए अपने कमरे में जा रही हूँ, बैठे बैठे सबको मेहंदी लगाते हुए मेरी कमर टूट गई। अंतरा ने कमर को सहलाते हुए बुरा सा मुंह बनाया, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी दाई आंख दबा दी। वो खिलखिलाते हुए जाने को पलटी ही थी कि पल्लवी की आवाज़ उसके कानों से टकराई, अंतरा तुम मेहंदी नहीं लगाओगी? अंतरा के आगे बढ़ते कदम ठहरे, लबों पर गहरी मुस्कान सजाते हुए वो वापस उनकी ओर पलटी और चहकते हुए जवाब दिया, भाभी जान हम हमेशा मेहंदी अपनी जीजी से लगवाते हैं और आज भी हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक आपको हमारी कोरी हथेलियां मेहंदी में रंगी नजर आएंगी। पूरे इत्मात के साथ उसने बड़ी ही बेफिक्री से जवाब दिया और खुशी से चहचहाते गुनगुनाते फुदकते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई।